अब हुआ क्या, अब यहां फिर एक और ईमान वाले का सिंबल, बेटों के सामने बहुत स्ट्रांग बने, कोई रोए नहीं, कोई धोए नहीं, चोट कितनी बड़ी पड़ी, कोई उन्होंने वावेला नहीं किया, सीना को भी नहीं की, बहुत स्ट्रांग रहे। लेकिन वतवल्ला अन्हुम, अब जब बेटों से मुंह फेर के अंदर गए, वकाल या सफाला यूसुफ, कहने गए हाय अफसोस है मुझे यूसुफ पे, वब्यद्दत ऐनाहु मिनल हुस्नि फहुव कज़ीम, और उसकी आंखें गम की वजह से सफेद हो गईं, सफेद मोतिया उतर आया, आंखों का नूर चला गया, वहुव कज़ीम, और वो खून के घूंट पी रहा था। इसको भी हाईलाइट कीजिए, ये भी मोमिन की अलामत है, दूसरों में इंतहाई स्ट्रांग, सब ठीक है, कुछ खराबी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और जब रब के सामने गया तो रो ले या धो ले या किसी का शिकवा शिकायत कर ले। हमारा हाल क्या होता है, जरा तकलीफ हमारी जिंदगी में आती है ना, सुना सुना के हम दूसरों का जीना धोपर कर देते हैं, क्या बताएं ये क्या है वो क्या है, और अकेले में हो तो कहते हैं अच्छा जी अल्लाह फिर तेरा शुक्र है जिस हाल में रखे। मोमिन ऊपर से बहुत स्ट्रांग होता है, अंदर से बहुत नरम होता है। आप इसको समझिए पिज्जे का क्रस्ट, कभी रोटी बनाई होगी, पिज्जा तो देखा ही होगा ना, बेस्ट पिज्जा क्या होता है, ऊपर से फुला हुआ क्रिस्पी, और जब मुंह में डालो तो अंदर से नरम। और उस रोटी को क्या कहेंगे, ऊपर से बड़ी मोटी लगे, तोड़ो तो दांत भी टूट जाए, ऊपर से सख्ती हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम। वो क्या है, हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, मोमिन दूसरों के सामने अपने आप को ढीला नहीं करता, खुशी है कि गम में लोग उसके चेहरे से नहीं जानते, जिस दिन ज्यादा दुखी होता है उस दिन ज्यादा अपने आप को सजा लेता है, क्या फर्क पड़ता है। अपने लिए सूल ले लीजिए कि मैं जब भी दुखी होंगी, जिस रात बीमारी से नहीं सो सकी उस दिन सुबह उठ के और ज्यादा अच्छे कपड़े पहन के बैठना कि मैं ठीक हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब रोजा रखते थे तो होंठों पे तेल लगा लेते थे कि इखलास की वजह से, कि लोगों को पता ना चले कि मेरा रोजा है। हम सोचे हम कितना बोलते हैं, थोड़ा दिल होता है, जो बर्तन बड़ा होता है ना उसके अंदर जाती हैं चीजें, थोड़े बर्तन से चीजें जल्दी निकल आती हैं, ज्वाला जर्फ होते हैं वो पी जाते हैं, अकेले में अब रो रहे हैं, अब अल्लाह को कह रहे हैं या आसफा, और आसफा क्या है, गम के मारे। यहां से लफ्ज आसिफ को भी ठीक प्रोनाउंस करने का इशारा ले लीजिए, हमारे यहाँ आसिफ लफ्ज बहुत आम है, लेकिन आइन से और सीन से और अलिफ से होगा, बड़े कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जिसमें कुछ तो बिल्कुल ठीक नहीं, जैसे अगर आसिफ ही कहते हैं जो यहां है तो गम खाने वाला अच्छा लफ्ज नहीं है, आइन अली स्वाद कर देंगे, आसिफ तोड़ने वाला। तो बहरहाल अब इसके ऊपर मैं नहीं बोलती, लेकिन यह कि याकूब अलैहिस्सलाम का दिल गम से भरा हुआ था। अब क्या हुआ, कालू तल्लाही तफ्तौ तस्कुरु यूसुफ, भाई कहने लगे यानी दूसरे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम के इस गम पे क्या कहने लगे, अल्लाह की कसम आप तो बस अपने आप को हलाक ही कर लेंगे यूसुफ के तस्करे में। यानी क्या कहा कि यूसुफ को याद कर करके ऐसा लगता है कि आप तो बस अपने आप को बिल्कुल घुला लेंगे। ये बात क्या थी, यानी अब ये भी नहीं बर्दाश्त करे कि यूसुफ का गम खाए बाप। हसद इतनी बुरी चीज है कि याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा उनसे ले लिया, लेकिन अब उस बेटे का गम भी नहीं करने दे रहे, कह रहे तफ्ता उतस्कुरु यूसुफ आप तो खुद को हलाक कर लेंगे यूसुफ के तस्करे में, हद तकून हरदन यहां तक क्या बीमार हो जाएंगे, औ तकून मिनल हालिकीन या आप हलाक होने वालों में होंगे। देखिए यहां एक छोटा सा इशारा मिलता है हम सबको, और वो क्या है कि जब हम लोगों को अपने गम सुनाते हैं ना तो लोग आगे से ऐसी ही दिल तोड़ने वाली बातें करते हैं, आप आजमा के देख लें। मसलन कोई भी गम सुनाए, आप कहते हैं कि आज पेट में बड़ी दर्द हुई रात को, मिसाल है अल्लाह ना करे हो किसी के, आप देखिए अगला फौरन पूछेगा अच्छा लगता है रात को आपने कुछ ज्यादा खा लिया होगा, फिर आपको गुस्सा आ जाता है, अच्छा लगता है आपने जली हुई रोटी खा ली होगी, अच्छा वो खा रही थी ना आप और खाएं। कोई मिसाल है बूढ़ा बंदा या शुगर का मरीज कहता है आज तो सारी रात जिस्म दुखता रहा, वो कहेंगे हाँ और चावल खाओ और चीनी खाओ। बस ये जुमले सुन के आप सोच लें कि ये सजा मिली इस बात की कि लोगों को अपने गम सुनाया। यानी लोग हंसते के होते हैं, रोते का कोई नहीं, कहते हैं कि हंसता बच्चा सबका और रोता बच्चा माँ का, और ये सच है। लोगों में हंसा करें मत, लोगों को अपने गम सुनाए, लोग आपके पास से चढ़ जाएंगे। सुनाना है तो वो 70 माओं से ज्यादा प्यारी जात को सुना लीजिए। किसी माँ की बात याद आती है, किसी औलाद के सदमे में गई तो अपनी फौतशुदा माँ को याद करने लगी, कहें कि आज मुझे अपनी अम्मी बड़ी याद आ रही हैं, वो होती तो मैं उनके कंधे से सर लगा के रोती, तो मैंने उनसे कहा कि वो तो एक माँ थी, आप 70 माओं वाली जात जो उससे भी ज्यादा प्यार करती है उसको जाके सुना के रो लें। देखिए ना, अगर मुझे कोई गम है खुदा ना खास्ता, मेरी माँ को मैं सुनाऊंगी क्या करेगी, वो भी बीमार हो जाएगी। बहन को सुनाएंगे तो डिप्रेशन में चली जाएगी, भाई को सुनाएंगे हो सकता है गैरत में आके कोई गलत ही कदम उठा ले, तो उसको सुनाइए जिसके कब्जे में दिल है। तो अल्लाह को सुनाकर गैरत को कायम रखे, और दुनिया को सुनाएंगे तो वो फिर आपको उल्टे मशवरे दे देंगे। इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं काल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। इस दुआ को हाईलाइट कीजिए, बहुत ही खूबसूरत दुआ है। कहने लगे कि यानी बेशक मैं अपनी परेशानी और गम की शिकायत तो अल्लाह से करता हूँ। बस्सी कहते हैं बस्सा से, वो गम जिसको इंसान छुपाना चाहे और छुपा ना सके। बाज दफ़ ऐसे हालात हो जाते हैं ना, आप जितना मर्जी छुपाएं लेकिन आपका गम छुपता नहीं है, बिखर बिखर जाता है। हुजन दिल का गम, हाँ मैं अल्लाह को सुनाता हूँ, क्योंकि वालमु मिन अल्लाही मा ला तालमून, मैं अल्लाह से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये भला क्या है? वो ख्वाब नंबर एक, उनको याद था कि यूसुफ जिंदा है क्योंकि यूसुफ ने वो सितारों वाला ख्वाब देखा हुआ था। और दूसरा, इसमें मोमिन ईमान वाले की एक पहचान बता दी गई कि वो दूर देख लेता है, उसको उसके पीछे बुरहान दिखती है कि अल्लाह मेरे ऊपर कोई गम डाल रहा है तो वो क्यों डाल रहा है। अच्छा, अब अल्लाह से बातें की, अकेले में रोए धोए थोड़ा सा थके, अब बेटों को आके फिर बाहर मुंह साफ की आंखें साफ की होंगी, बाहर आके कहते या बनी यज़हबू फतहस्ससु मिन यूसुफ, ए बेटो जाओ और यूसुफ को ढूंढो। या फिर देखिए असबाब, हम बाज दफा इतना गम मनाते हैं कि फिर असबाब भी इख्तियार नहीं करते। यहां से पता चलता है कि दुआ अल्लाह से और कोशिश इंसानों की। यहां लफ्ज क्या आया है? तहस्सुस। उर्दू में क्या बोलते हैं हम एक लफ्ज? तजस्सुस। ये वही लफ्ज है, तजस्सुस होगा तो बुरी चीज है। इसीलिए सूरत अल हुजरात में कहा गया वला तजस्सुस, तजस्सुस ना करो। लेकिन तजस्सुस जब तहस्सुस होता है तो ये अच्छी चीज है, यानी सर्च करो, जाके ढूंढो किधर है यूसुफ को व अखी ही और उसके भाई को, और देखो वला तयसु मिर रौहिल्ला, और ना मायूस होना अल्लाह की रहमत से। मोमिन कभी मायूस नहीं होता क्योंकि इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, क्योंकि अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर कौम ही मायूस होती है। यहां से आपको तदबीर का भी अमल दिखता है कि गम बड़े से बड़ा आ जाए लेकिन इंसान को अपने गम को मिटाने के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। ये नहीं कहना कि अब हम बैठे हुए और हम कुछ ना करें। और देखिए, कोई भी सदमा आप पे आए, जिंदगी में आते हैं, यकीन कीजिए बाज़ दफ़ा इंसान इस तरह घेर लिया जाता है कि लगता है सारे दरवाजे बंद है। और ख़ास तौर पर जब कोई एक गम आता है तो लगता है अब मेरी ज़िंदगी में तो कोई खुशी नहीं है। ऐसे वक्त में तहस्सुस कीजिए, अल्लाह ने इस गम के नीचे क्या छुपा के रखा हुआ है मेरे लिए, कोई ना कोई इसके पीछे खैर जरूर होगी। ईमान जो होता है ना, बंदे को बारीक बीन बना देता है। जैसे आई साइट होती है ना किसी की, बड़ी तेज होती है। बस मैं आपसे कहूँ कि वो दीवार में जो पर्दा लगा हुआ है उसके ऊपर वो लाइनें गिन के बताएं, कोई बैठेगा फौरन 1 2 4 10 करके गिन देगा, कोई कहेगा जी मुझे तो दिखती नहीं। ये हमारी जाहिरी साइट है, लेकिन एक इन साइट भी होती है। जब अल्लाह के साथ ताल्लुक होता है ना, तो आपको हर बुराई के पीछे से खैर दिखती है। मसलन सिंपल बात करते हैं, आप अपनी जिंदगी का कोई मामला याद करें, कोई गम आया होगा। मैं नहीं मानती कि आप में से किसी को आज तक कोई गम नहीं आया, सच है। क्योंकि अगर गम से कोई बचा होता तो वो 7-8 साल की बच्चियां बची होती जिनसे मैंने एक मौके पर बात की। ऐसी किसी बच्चियों के साथ सेशन था। अब आप देखिए, सब्र की बात हो रही थी तो मैं बात कर रही थी कि इन बच्चों को क्या गम होगा, मैं इनको सबर क्या बताऊं कि सबर क्या होता है। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कि बेटा आपकी उम्र में तो कोई गम नहीं होता ना, तो सबकी हाथ उठे थे, नहीं जी बहुत गम है। तो मैंने कहा यही गम हो सकता है, छोटा भाई वो मेरी पेंसिल ले गया और वो मेरी कैंडी ले गया, और तो कोई गम नहीं होता है। तो गम से कोई आजाद नहीं है। जब कभी आपको आज के बाद कोई तकलीफ आए ना, तो बस उसके पीछे देखिए पांव उठा के कि इसके पीछे अल्लाह ने क्या खैर रखी हुई है। और ये कब होगा? जब आप अल्लाह के साथ राजी रहेंगे। जरूर इसमें मेरे लिए कोई खैर है, अम्मी ने आज डांटा है ना, इस डांट के पीछे मेरे लिए क्या खैर है। आज शौहर नाराज हो गए, गुस्से में बोले, आज इसके पीछे क्या खैर है। आप देखेंगे जब आपको पीछे देखने की आदत हो जाएगी ना, तो फिर आपका घर बहुत साफ रहेगा, फिर दिल साफ रहता है, फिर वसवसे नहीं आते, अल्लाह ताला से इंसान नाराज नहीं होता। खैर कहने लगे कि जाओ भाई अब उसको ढूंढो। अब क्या हुआ? तीसरी दफा पहुंचे। पहली दफा भाई अपने लिए अनाज लेने गए थे, दूसरी दफा बिन्यामीन को लेके गए और घेर लिए गए। अब ये तीसरी मुलाकात हो रही है भाइयों की। आयत 88, फलम दखलू अलैहि, बस जब वो उस पर दाखिल हुए, कालू या अय्युहल अजीज मस्सना वाहलना दुर्रु, कहने लगे, ऐ सरदार ऐसी इकतदार, हमें और हमारे घर वालों को बड़ी तकलीफ पहुंची है। यानी अब तो पैसा ही खत्म हो गया, खाना पहले ही कोई नहीं था, पैसे भी खत्म हो गए, वह जी ना भी विदा अति मुजातिन, और हम एक हकीर सी पूंजी लेके आए हैं। यानी वो जो एक नॉमिनल चार्जेस यूसुफ अलैहि सलाम ने रखे भी हुए थे, वो भी अब नहीं दे सकते, कुछ थोड़ा सा लाए, लिहाजा फाउफिलन अल कैल, हमारे लिए कैल को, वजन को, सामान को पूरा कर दे। यानी थोड़े पैसे ले ले और हमें सामान दे दे, और अगर इन पैसों में भी नहीं आता तो बतसद्दक अलैना, तो फिर हम पे सदका ही कर दे। ये है अब कहानी का ड्रॉप सीन। जरा सोचिए, नहनु उस्बा, पीछे क्या दावा था, हम बड़ी जमात हैं, हम प्यारे हैं, हमें ये है, इतनी अकड़ थी, और आज भिखारी बन के खड़े हैं यूसुफ के सामने कि सदका खैरात कर दो। किस दिल से यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था, और आज उस यूसुफ के सामने हकीर बन के खड़े हैं कि यूसुफ, यूसुफ तो नहीं था उनको लग रहा, ये तो अजीज ही था, उनको क्या पता था ये यूसुफ है। कहने लगे, बस हम पे कुछ सदका खैरात कर दें, क्योंकि इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिकीन, अल्लाह ताला सदका करने वालों को जजा देता है। अब ये सीन भाइयों का यूसुफ से बर्दाश्त नहीं हुआ। आप सोचिए ना, इतने चौड़े हट्टे कट्टे भाई जो भी हैं, फकीर के रूप में खड़े हैं यूसुफ के सामने। قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون, कहने लगे, क्या तुम जानते हो क्या किया था तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ, हाँ हाँ मगर जब तुम जाहिल थे। यानी यूसुफ ने बात को एक्सपोज कर दिया, क्या तुम्हें पता है तुमने यूसुफ से क्या किया था, और साथ ही साथ उसके भाई का तस्करा करके भी बता दिया कि यूसुफ के बाद बिन्यामीन से भी इनकी कुछ खटपट रही। लेकिन उनको शर्मिंदगी से बचाने के लिए क्या कहा, इज अंतुम जाहिलून, ना समझते, तुम्हें पता नहीं था ये कितना बड़ा गुना है, इस गुना की शिद्दत से तुम नाचना थे। अब ये बात सुन के वो तो हैरान हो गए होंगे, हम तो इसको अजीज मिसर सोच रहे हैं। हालांकि कालू, कहने लगे, इन्नकल अंत यूसुफ, क्या ये तू यूसुफ है। यानी उनको पता था कि यूसुफ का मामला हमारे और यूसुफ के सिवा किसी को नहीं पता। कहने लगे, क्या तुम यूसुफ हो। और अब उसके साथ ही उन्होंने गौर से देखा भी होगा, कुछ ना कुछ तो शबाहत होती है ना इंसान पे, चाहे उसके दिन बड़े हो जाएं, चाहे एक इंसान जो है उसके हालात बदल जाएं। देखिए, गुर्बत में तो चेहरे पे झाइयां ही बड़ी पड़ जाती हैं और चेहरे पे निशान ही बड़े होते हैं, लेकिन अल्लाह चार पैसे देता है, पॉलिशिंग करा करा के, फेशियल करा के शक्लें भी बदली होती हैं। वल्लाही दौलत का असर शक्ल पे भी आता है। उनको नहीं उम्मीद थी कि यूसुफ ऐसे होगा। قال انا يوسف, हाँ मैं यूसुफ हूँ। ये नहीं कहा انا عزيز مصر و يوسف, कोई बड़ाई नहीं, انا يوسف عاجزي, हाँ मैं यूसुफ हूँ, و هذا اخي, और ये मेरा भाई है। कौन सा, बिन्यामीन। कितनी आजजी है यूसुफ अलैहि सलाम के इस अंदाज में जो इस वक्त उन्होंने इख्तियार किया। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, अब इन जुमलों को आप अपने दिल की तख्तियों पे लिख लें। ये वो वक्त होता है जिस वक्त हम अपने कपड़ों से बाहर आ जाते हैं, फिर हम सबर के सारे बंद तोड़ के कहते, आओ अब मैं तुम्हें सुनाती हूँ, मेरा वक्त है बोलने का। था ना यूसुफ के बोलने का वक्त, भाई इतना सबर किया है, लेकिन क्या कहते हैं, कद मन्नल्लाहु अलैना, बेशक एहसान किया हम पे अल्लाह ने, क्या, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर, बेशक जो भी तक्वा इख्तियार करेगा और सब्र करेगा, फइन्नल्लाह ला युदीउ अजरुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नहीं जाया करता मुहसिनों का अजर। साथ ही साथ उनको नसीहत कर रहे हैं कि अल्लाह का एहसान हम पे, कोई शर्मिंदा करने वाला जुमला है नहीं, बल्कि क्या कहा कि तुम पे हमें कोई गुस्सा गिला नहीं, ये अल्लाह की शान है, उसने हमारे सब्र और तकवा का इम्तिहान लेना था, और मुश्किल हालात में डालकर अगर किसी को तकवा मिल जाए तो बस समझिए वो मुश्किल नेमत है। एक जुमला मैंने अक्सर बोला अपने क्लासेस में, दरसों में, कि मुसीबत इंसान का उस्ताद बन जाती है अगर इंसान उससे सबक ले ले। कभी जिंदगी में आपके ऊपर कोई आजमाइश आए, जान की, माल की, औलाद की, घर की, शौहर की, कोई भी, तो उसे सबक ले। सबक नहीं लेंगे ना तो मारे जाएंगे। किसी ने मुझे कोई बात की कि बच्ची छोटी थी, उसकी शादी की हमने, फिर क्या हुआ, कुछ महीने या कुछ अरसे के बाद घर टूट गया, बड़ी परेशान है, ये है वो है। तो मैंने उसे कहा कि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको एक बहुत आसान सा हल बता देती हूँ क्योंकि ऐसे वक्तों में मोस्टली लोग कॉन्फिडेंट लूज कर देते हैं, फेस नहीं करते, दावतों पार्टियों में जाते आते नहीं है और फैमिली के सवाल जवाब है। मैंने उन्हें कहा कि आप थोड़ी देर के लिए आइसोलेशन चाहते हैं ना, मैं आपकी मदद करती हूँ, आप अपनी इस बच्ची को किसी कुरान के कोर्स में डाल दें, 1 साल के लिए उसको दूर कर दें, अपने घर से, शहर से भी दूर कर दें, दूसरे शहर में डलवा दें। फायदा क्या होगा कि रिश्तेदारों की बातों से बच जाएगी, फेस नहीं करना पड़ेगा और कुरान उसका दोस्त बन जाएगा। अंत जलिल कुरान अल अजीम अरबी अकल बी व नूर सदरी। और वहां से 1 साल के अंदर वो इतना ईमान और तकवा लेके आएगी कि उसको लगेगा जो गैर शोहर छोड़ के, शुक्र है छोड़ गया ताकि मुझे कुरान जैसी दोस्ती मिल गई, शोहर तो फिर मिल जाएगा। कहती नहीं, हमने उसको बहुत आगे पढ़ने के लिए डाल दिया। मैंने कहा बहुत क्या पढ़ेगी? नहीं फिर देखे ना अब आगे पता नहीं उसके साथ क्या होना है, तो अब हमने उसको और हाई एजुकेशन में डाल दिया ताकि वो और पढ़ लिख के जाए तो फिर जॉब कर ले। मैंने कहा चॉइस इज योर्स, मैंने जो बात बताई है ना इसमें आपकी बच्ची की ना सिर्फ ये कि आखिरत दुनिया भी महफूज है, अगर इसको इस मुश्किल हालात में अल्लाह ने अपने रास्ते पर डाल दिया, देखिएगा ऐसा कदरदान साथी मिल जाएगा जो इसके सारे गम धो देगा, तो बाकी फैसले आपके हैं। लेकिन अमूमन होता क्या है, जब कभी हमारी बच्चियों को, हमें किसी को ऐसे मामला पड़ते हैं ना, हम और ज्यादा अपोलोजेटिक हो जाते हैं, नहीं अब ये ना हो जाए, अब वो ना हो जाए, अब ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। नहीं, वो मुश्किल मुबारक है कि जो आपको बाद में मोहसिन बना दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, कोई फिक्र की बात नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कहता, ये मेरे नसीब की बात थी और अल्लाह ने मुझे मिस्र पहुंचाना था, आप तो मेरे मोहसिन हैं। ये लफ्ज़ है ना अजरल मोहसिनीन, इसको भी समझे। देखिए आप जरा, हम इस कहानी के ऊपर अगर इस तरह से बैक ट्रैक करें, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनको कुएं में ना डालते तो क्या आज यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के वजीरे खजाना, फाइनेंस मिनिस्टर बने होते? तो फिर उनके वहां पहुंचने की सीढ़ी क्या है, वो जीना क्या है, लैडर क्या है, उनके 10 भाई। तो उन 10 भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनसे नाराज होना चाहिए? थैंक यू लेटर भेजिए उन लोगों को जिन्होंने आपकी मदद की और आप किसी मुकाम पे पहुंचे। लेकिन इन नहुमैयत की वयस्बिर, हमारा हाल क्या है कि हम माफ ही नहीं करते। एक और बात समझिए, आगे याकूब के नाते से भी बात होनी है, यही कर लेते हैं। आपको कोई दुख देता है, फिर उसके बाद आपके हालात अच्छे हो जाते हैं जैसे कि यहां हो रहे हैं, ऐसे मौके पे दुश्मन को माफ करना बहुत आसान है। मिसाल देती हूँ, आपकी बच्ची की मंगनी कहीं से छूट गई, किसी ने तोड़ दी मंगनी, जाओ भी हमें नहीं करनी। अल्लाह ने आपकी उस बच्ची को इतना अच्छा जोड़ दे दिया, उससे भी अच्छा रिश्ता मिल गया, कल वही लड़का वही रिश्तेदार सामने आते हैं, माफ करना बहुत आसान है। कहते हैं कोई बात नहीं, हमारी बच्ची खुश है, हम आपसे क्यों लड़े। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपका रिश्ता छोड़ा और अब आपकी बच्ची किसी जगह बहुत ही खराब जगह चली गई, ऐसे वक्त में माफ करना ये बड़े दिल गुर्दे का काम होता है। यूसुफ के किरदार से अब पता क्या चल रहा है कि यूसुफ को तो खैर ही खैर मिली भाइयों से, अभी आगे जाके हम देखेंगे कि याकूब अलैहिस्सलाम को तो मुश्किलात में डाला गया, इसके बावजूद उन्होंने बेटों को माफ कर दिया, कहने लगे मोहसिन बनना है। ये मोहसिन बनी है, कहें लोगों को आओ मुझे सताओ, तंग करो मुझसे। किसी ने कल सवाल किया ये बताएं कि सिला रहमी की क्या हद है, मैं हंस पड़ी, मुझे समझ आ गई या पूछेंगी कि आगे से। मैंने कहा आप बताएं, मैंने कहा कि जो अल्लाह से दर्जे लेना चाहते हैं ये उसकी हद है। नहीं, एक दिन में कितनी दफा सिला रहमी करें? मैंने कहा जितनी दफा आप अल्लाह से अजर लेना चाहते हैं। नहीं, इसकी कोई हद है कुछ? यानी बहुत अच्छे तरीके से बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें ये आपके अपने ज़र्फ पे है, आप अल्लाह से जो लेना चाहती हैं ना वो देना शुरू कर दें। खैर अब यहां क्या हुआ, अब जरा इस जुमले को बड़ा बड़ा हाईलाइट कर लें। कालू तल्लाही, कहने लगे अल्लाह की कसम, ताज ये कसम कह, लकद आसरक अल्लाहु अलैना, बेशक अल्लाह ने चुन लिया तुझको हम पर, इख्तियार कर लिया अल्लाह ने तुझे हम पर, ज्यादा इज्जत दे दी। वाइन कुन लखातीन, बेशक हम ही खता करते। ये जुमला यूसुफ ने कितने साल बाद सुना, पहले दिन नहीं सुना, वो कुएं की गहराइयां, वो अजीज मिस्र के घर की तनखाइयां, फिर जेल की सुलाखें, इतने मरहलों के बाद वो जिसने कल आपको कुएं में फेंकना चाहा और जाके कह दिया कि हमने कुछ नहीं किया, आज आके कह रहे हैं कि नहीं हमें यकीन है कि अब आपको अल्लाह ने चुना। और वल्लाही ये जुमला आप जरूर 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 सुनेंगे, शर्त क्या है कि इन्नहुमैयत्तकी वयस्बिर। यूसुफ अलैहि सलाम ने लोगों पे नजरें नहीं डाली, अल्लाह पे डाली। लोग जो हमारे साथ करते हैं ना ये अल्लाह करवाता है, अल्लाह रोक नहीं सकता, अगर आपका शौहर आप पे जुल्म करे तो क्या आपके कंट्रोल में तो वो नहीं है, अल्लाह के तो है ना। अगर किसी मुल्क के हुक्मरान वहां के लोगों पे जुल्म करें तो क्या अल्लाह उनको नहीं रोक सकता? रोक सकता है, क्यों नहीं रोक रहा? ये वजह है। अल्लाह ताला के फैसलों पे राजी रहने वालों को बिल आखिर ये जुमला जरूर जरूर दुनिया में मिलता है कि वाकई आप हमसे अच्छे रहे और वह इन कुन न लखाते न खता करते। कोई थोड़े दिल का इंसान होता ना तो हा 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 करता, देखा ना मैं सच था ना, देखो अल्लाह ने मुझे क्या दिखा, वो देखो मेरी कुर्सियां और मेरे मेज और मेरा घर देखो। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुबान पे क्या फूल झड़ रहे हैं? قال لا تسريب عليكم اليوم, कहने लगे आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं। आई विल नॉट से एनी थिंग टू यू, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि यग़फिरुल्लाह लकुम, बल्कि तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, क्योंकि वहुवा अरहमुर राहिमीन, वो सबसे ज्यादा रहम करने वालों में से रहम करने वाला है। इस एक जुमले में बहुत कुछ है। पहली बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को शर्मिंदा नहीं किया। दूसरी बात यह है कि उनकी पकड़ नहीं की, ना तो पुलिस में पकड़ाया और ना रिश्तों की मार मारी। अगली बात है कि उनके लिए दुआ भी की। किसी बंदे को उसकी गलती के ऊपर आप माफ करते हैं, बार सफ ऐसा होता है ना, हम कहते हैं अच्छा भी मैंने तुम्हें माफ किया, फिर तो कहते हैं मेरे दिल से वैसे बात नहीं जा रही, अच्छा तुम मेरे सामने ना आना करना, वैसे मैंने तुम्हें माफ किया, कभी ऐसा होता है? एक और माफी का तरीका क्या होता है, लोग कहते हैं मैंने जी माफ किया वैसे अल्लाह आपसे पूछेगा। भाई आप खुद पूछ लें अल्लाह के वास्ते, अल्लाह पे ना किसी को डालें। देखिए आपका कोई दिल दुखाता है ना, आपको पूरा हक है आप जाके दुखा लें, किसी ने आपकी उंगली काटी आप भी काट लें, लेकिन कभी किसी को ये ना कहें कि अल्लाह तुमसे पूछे, क्योंकि बंदा पूछेगा ना तो वो तो अपनी औकात से पूछेगा, अल्लाह पूछेगा तो वो बहुत बड़ा पूछेगा। और कभी अल्लाह से ये भी ना कहे कि अल्लाह मेरा इंसाफ करना, अल्लाह से इंसाफ मांगेंगे जमीन की तह में जाके खप जाएंगे, इतना हमारे ऊपर जुल्म है अपना ही। 12वें पारे की पहली आयत में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला लोगों को उनके गुनाहों पे पकड़ ले तो जमीन पे एक चलता फिरता ना बचे, करें क्या? यग़फिरुल्लाहु लकुम। अच्छा अब मैंने आपसे एक सवाल किया कि क्या मैंने भला अपने रिश्तेदारों को माफ कर दिया होगा जिन्होंने मुझे सताया, मसलन सास मरहुमा, जिनको अक्सर हम कब्र तक नहीं छोड़ते। किसी भाई ने दिल तोड़ा, क्या मैंने उनको माफ कर दी? कैसे पता चले कि हमने अपने रिश्तेदारों को जिन्होंने हमें सताया उनको माफ किया? तो उसका एक क्राइटेरियन नोट कीजिए कि किसी को आप माफ करते हैं ना, उसकी नक्द अलामत क्या है कि आप उसके लिए फिर अल्लाह से दुआएं शुरू हो जाते हैं, अल्लाह इनके लिए रहम कर, अल्लाह अब इनका भी अच्छा मामला कर, अल्लाह तूने मुझे तो बड़ा अच्छा दिया अब इनको भी अच्छा कर दे, अब इनको भी हिदायत दे। यानी किसी के लिए जब दुआ के लिए हाथ उठते हैं ना तो ये आपकी उसके साथ सिंसियरिटी की अलामत होती है। और यही खूबसूरत अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पे थे जब मक्का फतह हुआ। लोगों को लग रहा था कि आज तो बस पता नहीं क्या हो जाना है, 13 और 8 साल तकरीबन 21 साल के जुल्म थे उनके, कोई कम थे? कहा बताओ जरा तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? तो कहा हमें आपसे बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं, हमें पता आप बड़े अच्छे इंसान हैं। तो आपने कहा आज मैं तुम्हें वही कहूंगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा था कि ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, आप यहां बैठे बैठे हर एक हम में से कोई बोझ लेके बैठे हुए ना, कोई भाई के खिलाफ गिला, कोई बहन के खिलाफ, कोई खाला के, कोई पुप्पो के, कोई शौहर के, कोई ससुराल के, यहां बैठे बैठे कहिए कि ला तसरीब अलैकुम अल्यौम। यकीन करें आप यहां से उठेंगे ना तो आप सोचेंगे आपका 5 पाउंड वजन कम हो गया, लाइट वेटेड हो जाएंगे, हल्के फुल्के हो जाएंगे। ये जो कदूरतों के और मैंने नहीं छोड़ना, मैं शक्ल नहीं देखूंगी, ये नहीं करूंगी, कोई हंस पोड़े तो मान भी जाते हैं, अगली दफा फिर नाराज होते हैं, ये खुद बोझ है हमारे ऊपर, वल्लाह ही बोझ है। कहे मैंने सबको माफ किया, कह के देखे जरा। हमने ऐसी अपनी क्लास में एक्टिविटी की थी, यकीन करें इतना पॉजिटिव उसका फीडबैक आया था कि लोगों ने रो रो के अपनी शेयरिंग की थी। कहे मैंने सबको माफ किया, आप एक एक रिश्ते से शुरू कर लें, जिसने भी आपका दिल दुखाया आपके मैंने तुम्हें माफ किया, बल्कि अल्लाह भी तुमको माफ करे। क्योंकि हम तो अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ्वा फाफ अन्नी, ये कहते हैं ना जब ताक रातें होती हैं तो यही मांग रहे होते हैं ना, और हम कहते हैं अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, तू माफी को पसंद करता है, माफ कर दे, लेकिन मैंने नहीं करना। हम जो दूसरों को नहीं दे रहे होते वो खुद मांगते हैं, तो ऐसे तो कभी नहीं मिलेगा। अच्छा यहाँ एक और चीज देख लें फिर आगे चलते हैं, यही असल में पीक है इस सूरत की, अब आगे तो बस चंद आयतें रह गई। और वो क्या है कि यूसुफ ने भाइयों को शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि आगे इनकी दुआ से भी पता चलेगा। इस कैफियत को इंग्लिश में कहते हैं विन विन, तुम भी जीतो हम भी जीते, विन विन सिचुएशन। किसी को शर्मिंदा करके आप ना तो उसे मोहब्बत ले सकते हैं, ना उसकी दुआएं ले सकते हैं, ना केयर ले सकेंगे। ये जो कहते हैं ना अगले को जलील कर दूं ताकि मैं तो अब शादी में जा रही हूं सबको सुनाऊंगी इन्होंने मेरे साथ किया क्या, ये विन विन नहीं है। किसी का दिल दुखा के आप उसकी मोहब्बत ले सकते हैं। किसी इंसान का टारगेट क्या होना चाहिए कि मेरे दुश्मन भी मुझसे मोहब्बत करें, मेरे मुखालिफ भी मुझसे मोहब्बत करें। अरबी का एक मुहावरा है कि किसी बंदे की तारीफ जब तक उसका दुश्मन ना करे तो उस बंदे की बात सच ना समझो। और इसके लिए बहुत बड़ा ज़र्फ़ चाहिए होता है। ये हमारी जुबानें अगर काबू में आ जाएं और हम अपने नफ्स पे काबू पा लें तो ये बहुत आसान है। खैर अब ये सीन कितना ही ज़्यादा सेंटिमेंटल होगा, इसको ज़रा देखें जन्नत में इंसला हज़रत यूसुफ़ से सुनेंगे भी कि सुनाइए उस दिन दिल पे क्या गुजरी थी। हो सकता है यूसुफ अलैहिस्सलाम उस दिन हमें भी ना शो करें कि दुख बड़ा हुआ था, लेकिन होता है। लेकिन अल्लाह पे राजी रहें तो खुश होता है इंसान। अब भाइयों का मामला रफा दफा हुआ, रोए धोए होंगे, खुशी हुई, अब बाप याद आया, बाप तो भी कनान में है। भाइयों ने बताया कि अब्बा जी तो आपके गम में रो रो के नाबीना हो चुके हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई जा चुकी थी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अब उसका एक तोड़ करते हैं, इज़हबू बी कमीसी हाजा, जाओ मेरी इस कमीज के साथ, यानी अपनी कमीज दी और कहा इसको ले जाओ, फलकूहु अला वजही अभी, इसको डाल दो मेरे बाप की आंखों पे। फर्क दिख रहा है अभी और अभी कुम में, ये यूसुफ का किरदार बचपन से आपको दिख रहा है, अभी ना अभी अबू प्यार से बुला रहे हैं, कहेंगे मेरे बाप की आंखों पे डाल दीजिए, या तीबसीरा, देखना बीना होके चल पड़े, यानी उनकी बिनाई ठीक हो जाएगी, आ जाएंगे। और जो ही उनकी बिनाई ठीक हो, वह तू नी भी अहलिकुम अजमाइन, ले आओ अपने सारे घर वालों को, यानी अब 10 भाई तो मौजूद हैं, 11वां बिन्यामीन है, बाप भी आएंगे और कहा सारी फैमिलीज भी आ जाओ, बहुओं को भी ले आओ, पोतों को भी ले आओ, सबको ले आओ। आगे कहानी चलती है फिर बात करेंगे। वलहम फसलतिल ईरू, जब वो काफला वहां से चला, कौन सा काफला, मिस्र से कमीज लेकर कनान की तरफ आ रहा है, काला अबूहुम, उनके बाप ने कहा, कौन थे बाप, याकूब, किसको कहा, जो घर में लोग मौजूद थे क्योंकि बेटे तो वहां थे, क्या कहा, इन नीलाजीदुरीखा यूसुफा लौलान तुफन निदून, बेशक मैं तो यूसुफ की खुशबू पाता हूं अगर तुम मुझे बहका हुआ ना समझो। वहां थी कमीज अभी और इनको खुशबू आ गई। घर वालों ने ये जब बात सुनी, कालू तल्लाही, कहने लगे अल्लाह की कसम, यानी देखिए गुस्ताही का अंदाज है कि बूढ़े दादे को या बूढ़े सुसर को क्या कह रहे हैं घर वाले, कहने लगे कि इन्नक लफी दलालिकल कदीम, आप तो अपनी उसी पुरानी गुमराही में। ये टोन किसकी है, बाज लोग कहते हैं ये किसने कहा, जी बेटों ने कहा, बेटे तो वहां थे, ये बेटों के घर वालों ने कहा। यहाँ एक अमल का नुक्ता नोट कीजिए कि जो टोन बेटों की होती है ना बात करने की माँ बाप से, बाद में वही बहुओं और पोतों पोतियों की बन जाती है। ये आप देख लीजिए घरों के अंदर नक्शे आम है, जो बेटे इज्जत नहीं करते ना अपनी माओ की या बापों की, उनके घर वाले उनकी बीवियां भी नहीं करती। वो कहते जब ये नहीं करते जिनको पैदा किया तो हम क्यों करें। और इसका ऑपोजिट भी होता है, असर आ जाता है। और ये सब भी इसी तरह दलाली कल कदीम की बात कर रहे हैं। खैर फलम मान जा अल बशीरू, फिर जब आ गया खुशखबरी देने वाला, अलकाहु अला वजहिही, बस डाल दिया उस कमीज को उनके चेहरे पर, फरतद बसीरा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम देखने लग गए, बिनाई पलट आई, काल अलम अकुल लकुम, कहने लगे देखो क्या मैंने तुमको नहीं कहा था, क्या इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, के बेशक मैं तो अल्लाह से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। आइए अब यहां थोड़ी सी बात करके आगे चलते हैं। देखिए यूसुफ की कमीज याकूब अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ा सदमा देने का जरिया बनी, वो कमीज ही थी ना बिदमिन कजिब, झूठा खून, उसी कमीज को देख देख के रो रो के उनकी आंखें चली गई। आज इसी कमीज की वजह से आंखें आ गई। ये कैसे हुआ, आप हैरान होंगे कि ये आयत कुरान की, जो आप में से हो सकता है किसी ने आज फर्स्ट टाइम सुनी हो, आपको होता है कि नॉन मुस्लिम डॉक्टर उन्होंने इस आयत पे गौर किया, इस पे सर्च की, और आज के दौर में जिसको आप बोलते हैं ना आंखों का मोतिया, उसका इलाज पता क्या निकाला है, उन्होंने कहा कि ये कमीज डाली और पहनी भी कमीज थी। और इस वक्त की बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च क्या है कि आंखों के आंसुओं का पानी जमा करें और इंसानी जिस्म से जो पसीना निकलता है इनको जमा करके उन्होंने आंखों के मोतिये का इलाज निकाला और उससे आंखों का मोतिया ठीक हो रहा है। कल साइंस लोगों को मुसलमान करेगी, ये याद कीजिए। कल फ्यूचर का मुबल्लिग और प्रीचर जो है ना, वो मैं और आप नहीं है, ये साइंस के हकायक बोल बोल के लोगों को बताएंगे कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। क्या हकीकत है अल्लाह को पता है, लेकिन वो कमीज डाली, अल्लाह के हुक्म से बरकत है। याद रखिए, कमीज और कपड़े में कोई बरकत नहीं। पीर साहब की कमीज पहने तो ये हो जाए, पीर साहब की ये कर दे, कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह किसी जरिए चीज में बरकत डाल दे, अल्लाह ना डाल दे, इससे कोई शिर्क का दरवाजा नहीं खुल सकता। ये अल्लाह तआला का एक मौजजा था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जरिए से हुआ। अब जब बाप की आंखें ठीक हो गई, कालू या अबाना, कहने लगे हमारे अब्बा जान, क्या, या अबा नस्तगफिर लना जुनूबना इन्ना कुन्ना खातेन, बेशक हमारे गुनाहों की माफी मांगी है क्योंकि हम खताकार थे। अब दिल पसीजा। अच्छा, अब यहां देखिए कि इन्होंने ये जो बात कही कि हमारे गुनाहों की माफी मांगी है, ये वक्त की जरूरत भी तो थी ना। हर चीज तो साबित कर रही है कि यूसुफ अलैहि सलाम सच्चे थे और ये झूठे थे। और दूसरी बात है कि इस कौम का मिजाज भी है, जब इनको लगता है ना झुकने में फायदा है तो फायदा ले लेते हैं, जब इनको लगता है अकड़ने में फायदा है तो अकड़ लेते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के जवाब पे जरा गौर कीजिएगा। बेटों ने कहा हमारे लिए बख्शिश की दुआ कर दे। काला सऊफ अस्तगफिरु लकुम रब्बी, कहा अभी नहीं, कुछ अरसे के बाद तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ मांगूंगा बख्शिश की। क्यों? इन्नहु वल गफूरु रहीम, बेशक वो बख्शने वाला और मेहरबान है। यहां मुफसरीन ने बहुत कुछ कहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो फौरन माफ कर दिया, इन्होंने थोड़ी देर के बाद क्यों मांगा? तो बास कहते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम के दिल से भी पूरा गुस्सा नहीं गया था, थोड़ा उनको टाइम चाहिए था बच्चों के लिए। कुछ ने कहा जो जरा सूफी किस्म का माइंड रखते हैं, उन्होंने कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अभी नहीं मांगी बल्कि फजर का वक्त चूज किया, जहां बिल्कुल अल्लाह ताला से कुर्ब का वक्त करीब होता है, और उस वक्त मांगा। लेकिन बात वही है कि अभी बाप को चोट पड़ी हुई थी ना, तो गम पे गम पड़ रहे हैं तो भुलाना आसान नहीं होता। कहा थोड़ी देर बाद कर दूंगा। इन्नहु अल गफूर रहीम, वो बख्शने वाला और मेहरबान है। और यहां से बाप की दुआ की भी अहमियत पता चलती है। हम तो कहते हैं ना माँ की दुआ जन्नत की हवा, हर बस और रिक्शे के पीछे कभी कभी लिखा होता था। हकीकत पता आपको क्या, कि किसकी दुआ ज्यादा लगती है? बाप की। और वजह क्या है कि माएं तो टोकरों के हिसाब से दुआएं देती हैं, बाप कभी दुआ देते दिखे? बाप तो कभी देते हैं दुआ, और जो कभी कभी चीज है उसकी वैल्यू बहुत होती है। बहरहाल अब देखिए क्या हो रहा है। ड्रॉप सीन, भाई पहले जा चुके थे, अब बाप भी जा रहा है। फलम दखलु अला यूसुफा, जब दाखिल हुए सारे यूसुफ पे, कहते हैं तकरीबन 70 के करीब लोग थे। ये है वो सवाल का जवाब जिस पे सूरह यूसुफ नाजिल हुई थी। यहूद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछवाया था कि मिस्र में कैसे आ गए थे बनी इसराइल, जबकि वो मुल्क शाम में थे। ये मौका था, कहत तो पड़ा ही हुआ था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अच्छे दिल का मुजाहरा किया कि सारे रिश्तेदारों को ले आओ, हम अच्छे खा रहे हैं, अब इन गरीबों को इधर क्यों रखें। आज लोग माशाल्लाह वीजे लगवा लगवा के ये काम करते हैं, नॉर्वे के खुद, और अब सारे फैमिलीज को वीजे लगवा के भेज लिया कि आ जाओ मामू भी, आ जाओ खाला, आ जाओ, चाहे झूठे वीजे लगवाने पड़े, एक एक की कितनी शादियां करके बुला ली। लेकिन कहते हैं कोई बात नहीं, हम खा रहे हैं, अच्छी जगह पे रह रहे हैं, तुम भी रह लो। लेकिन बहरहाल ये तो बगैर किसी जाली काम के पहुंच गए, सारे यूसुफ के पास पहुंच गए। आवा इलई ही अबा वही ही, जगह दी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालदेन को। ये वालदेन कहां से आ गए? यहां तक तो बाप था, माँ कौन सी थी? सौतेली। असल माँ जा चुकी थी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ सौतेले रिश्तों का भी भरम रखा। अल्लाह के नबी सल्लम ने ना सिर्फ ये के सौतेले बल्कि दूध के रिश्तों का भी इकराम किया। अल्लाह के नबी की जिंदगी में जब आपकी दूध पिलाने वाली माँ आपके पास आई तो आपने उनकी बड़ी ताजीम की। तो यहाँ से रिश्तों की ताजीम भी पता चलती है कि आपने अपने माँ बाप दोनों को साथ बिठाया, और साथ ही साथ क्या किया, माँ बाप दोनों आए और उनको साथ बिठाया। وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين, और कहने लगे कि दाखिल हो जाओ मिस्र में, अगर अल्लाह चाहे तो अमन और ईमान से रहोगे, यानी अब यहीं स्टे करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वह रफा अबा वही ही अलल अर्शी, और शहर में दाखिल होने के बाद अपने वालदैन को उठाकर अपने पास तख्त पर बिठाया। वखर्रू लहू सुज्जदा, और वो सब के सब इसके आगे बेख्तियार सजदे में झुक गए। वकाल या बती हाजता वीलु रुया, यूसुफ ने कहा, देखिए यहां फिर अबती, यूसुफ अब बड़े हो गए हैं लेकिन प्यार से बच्चे की तरह बाप को बुला रहे, या अबती, ऐ मेरे अब्बा जान, ये है ताबीर मेरे उस ख्वाब की। कितने साल के बाद ताबीर मिल रही है? 40 साल के बाद। मुफस्सरीन कहते हैं कि ख्वाब की ताबीर के लिए 40 साल तक भी इंतजार किया जा सकता है। हम कहते हैं रात को ख्वाब देखा है, बस सुबह देखना आज कुछ मिलना, क्योंकि वो ख्वाब में अम्मा आई थी, वो मुझे सोने की डली दे गई, पता चला उसी मियाँ की जॉब ही चली गई, हो सकता है। इसलिए नहीं कहा, ये है वो ख्वाब जो मिन कबलू, जो मैंने इससे पहले देखा था। कज्जालहा रब्बी हक्का, मेरे रब ने इस ख्वाब को हकीकत बना दिया। वकद अहसन बी इज अखरजनी मिन सिजनी, इसका एहसान है कि इसने मुझे निकाला कैद से। देखिए कहाँ लफ्ज डूबे हुए, इतना कुछ है इन लफ्जों में कि नाकाबले बयान। हम अल्लाह के एहसानों को समझ रहे हैं। अजीज मिस्र के घर में जाके टेम्प्टेड होने का कोई तस्करा नहीं, जेल में जाने का कोई तस्करा नहीं, बल्कि अखरजनी मिन सिजनी, कैद से निकालने का तस्करा। ये होते मुहसिन, अपने गम नहीं सुनाते, कहते वो वक्त याद करो बा जब मुझे अल्लाह ने कैद से निकाल दिया। वजा बिकुम मिन अल बदवि मिन बादी नज़ग शैतान बैनी व बैन इख्वती, और तुम सबको सहरा से लाकर मुझसे मिला दिया, हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल चुका था। और बात यह है कि इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, वाकया यह है कि मेरा रब गैर मखसूस तदबीरों से अपनी मशीयत पूरी कर लेता है, बेशक वो अलीम और हकीम है। सिर्फ हजरत यूसुफ की इस दुआ पे दर्स दिया जा सकता है। शुक्र इसको कहते हैं, किसी गम की बात नहीं, किसी तकलीफ की बात नहीं, बल्कि नेमतों की बात है। नेमतों की बात है कि अल्लाह तूने मुझे सब कुछ दिया, अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेते कि हाँ हाँ मैंने ये किया, और साथ ही दुआ, अब सब कुछ तो मिल गया यूसुफ को। आप सोचिए ना, जो ड्रीम होता है, बादशाह तक तो बन गया है, फैमिली भी पास आ गई, लेकिन एक चीज की भी कमी थी। अब वो मांगते हैं क्या, रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्की, ए मेरे रब तूने मुझे हुकूमत दे दी, शुक्रिया, थैंक यू, अजीज मिसर बन गया। वअल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, और तूने मुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाया, इनसाइट दे दी, लोगों को पढ़ना सिखा दिया, ह्यूमन साइकिक समझ गया, लोगों से कैसे डील करना है ये समझा दिया, यानी तूने इल्म की दौलत भी दी, दुनिया की भी दी। फातिर समावाति वल अर्थ, जमीन व आसमान के बनाने वाले, अंत वली यही फिर दुनिया वल आखिरा, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा सरपरस्त है। यानी नेमतों का इजहार है ना, अब मांग क्या रहे आ रहे, बस इस पे नजर डाल लीजिए। तवफनी मुस्लिम वल हिकनी बिस्सालिहीन, मेरा खात्मा इस्लाम पर कर, और इंजाम कार मुझे सालिहीन के साथ मिला दे। अगर आपको अल्लाह ने दुनिया में अब सब कुछ दिया हुआ ना, तो ये आखिरी हिस्सा मांगना शुरू कर दे कि अल्लाह मरते दम तक इस्लाम पे रखना और मुझे सालेहीन के साथ मिलाना। अल्लाह के नबी सल्लम की डेथ बेड पे भी यही दुआ थी कि अल्लाहुम्मा बिर रफीक लाला, यानी जब दुनिया की हर नेमत मिल जाए तो अल्लाह का साथ मांगिए और नेमतों पर दवाम मांगिए। हमें नहीं पता हमारा इंजाम कल क्या होना है, आज तो हम बड़े अच्छे हाल में हैं। बंदा है मोमिन को चैन पता किस दिन आएगा, जब वो जन्नत में पहुंचा होगा और अल्लाह के सामने बैठा उसके चेहरे का दीदार करेगा। हजरत उमर फारूक फरमाया करते थे कि मेरा एक पांव जन्नत में और एक बाहर हो, मैं फिर भी यकीन से नहीं कह सकता कि मैं जन्नती हूं जब तक मेरा दूसरा पांव जन्नत में ना हो। हम क्यों इतने मजे में है, ऐसे लगता है सर्टिफिकेट वीजा पासपोर्ट जन्नत का पॉकेट में लेके फिर रहे हैं। किसी को अल्लाह ने नहीं कहा कि आज के बाद कोई नेकी गुना कर लो तुम्हें जन्नत मिलेगी, हम में से कोई अशरा मुबशरा में से नहीं है। इसलिए फिक्र करनी है हमें कि हम मरेंगे तो उस वक्त हमारे साथ क्या होगा।
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.